अब 102 नंबर की कारिका से स्टार्ट करेंगे। तस्माद् अभिन्न कालेषु वर्णपाक्य पदादिषु वृत्तिकालः स्वकालश्च नाद भेदाद विभज्यते। तस्मात् तस्मात् मतलब तस्मात् कारणात्, उन कारणों से। किन कारणों से? तो पीछे में जो उल्लेख हुआ है, पीछे में उल्लेख ये हुआ था कि स्वतः शब्द जो है वह एक ही होता है, किंतु व्यंजक जो ध्वनि है उसके धर्म उसमें आरोपित हो जाते हैं। तो व्यंजक ध्वनि के धर्म के कारण वह जो है भिन्न भिन्न प्रतीत होता है शब्द, लेकिन स्वयं में शब्द एक ही होता है। इस बात को विस्तार से पहले बताया गया कई कारिकाओं में। उसी को कहते हैं कि तस्मात् कारणात्, माने इन कारणों से, अर्थात व्यंजक ध्वनि के धर्म का उसमें आरोप होने से। अभिन्न कालेषु वर्णवाक्य पदादिषु, अभिन्न कालेषु विशेषण है वर्णवाक्य पदादिषु का, कि वर्ण वाक्य और पद ये तीनों जो हैं, ये शब्द के तीनों रूप हैं। शब्द जो है वह क्या होता है? या तो वर्ण होता है, या वाक्य होता है, या पद होता है। तो वर्ण वाक्य पदादिषु अभिन्न कालेषु, माने ये जो वर्ण वाक्य पद हैं ये अभिन्न काल हैं वस्तुतः, माने इसमें काल का भेद नहीं है। काल मतलब वही मात्रा, एक मात्रा, दो मात्रा, तीन मात्रा। तो वर्ण वाक्य पद आदि में, पद आदि में अभिन्न काल है, काल का कोई भेद नहीं है। काल का भेद किसमें होता है? तो वह होता है व्यंजक ध्वनि में। वही आगे कहते हैं कि नाद भेदाद विभज्यते, माने नाद के भेद होने से, नाद माने ध्वनि, तो ध्वनि में भेद होने से अभिन्न काल वाला जो वर्ण वाक्य पद है उसमें भी भिन्न काल प्रतीत होता है। विभज्यते का अर्थ यहाँ पर करेंगे कि भेद व्यवहार कल्प्यते, माने नाद के भेद होने से, ध्वनि के भेद होने से शब्द में जो है भेद के व्यवहार की कल्पना होती है, माने भेद व्यवहार स्वीकार किया जाता है। अब इसके पहले दो चीजें हैं, एक है वृत्तिकाल, एक है स्वकाल। तो ये वृत्तिकाल और स्वकाल क्या है? ये दोनों जो हैं ये नाद के भेद हैं और इन्हीं को स्वीकार कर लिया जाता है शब्द में। तो ये वृत्तिकाल क्या है और स्वकाल क्या है वो देखिए। वृत्तिकाल का मतलब है कि चिर अचिर स्थिति काल रूप जो द्रुतादि तीन वृत्तियां हैं, मैंने पहले चर्चा की हैं, द्रुत वृत्ति, मध्यम वृत्ति और विलंबित वृत्ति। इसमें क्या होता है कि थोड़ा कम काल अगर हो तो वह द्रुत वृत्ति होती है, थोड़ा उससे अधिक हो तो मध्यम वृत्ति होती है, और ज़्यादा अधिक काल तक रहे तो वह हो गया विलंबित वृत्ति, ये आप जानते हैं। तो ये जो तीन भेद हैं, द्रुत, विलंबित और मध्यम, यही जो है ना वृत्तिकाल का यहाँ पर अभिप्राय है। तो वृत्तिकाल मतलब त्रिविध वृत्तिकाल, तीन तरह की जो वृत्तियाँ हैं उसका भेद। और स्वकालश्च, स्वकाल का अर्थ करना है यहाँ पर मात्राकाल। मात्राकाल क्या क्या होता है? तो ह्रस्वकाल, दीर्घकाल और पृत्काल। तो इसमें वृत्तिकाल और स्वकाल में आप अपनी ओर से ये कर सकते हैं कि वृत्ति का तीन अर्थ हो गया, द्रुत, मध्यम और विलंबित, उसमें काल लगा दीजिए कि द्रुत काल, विलंबित काल और मध्यम काल। इसी तरह से स्वकाल हमें भी, स्व का अर्थ हो गया ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, उन तीनों में काल शब्द जोड़ दीजिए तो ह्रस्व काल, दीर्घ काल और प्लुत काल। तो ये जो तीन वृत्तिकाल है और तीन स्वकाल है ये नाद का भेद है, और इसी नाद के भेद को वर्ण वाक्य पद आदि में जो है विभज्यते, माने भेद व्यवहार कल्प्यते। इस तरह से 102 वाली कारिका को हमने पढ़ा। अब 103 कारिका को हम लोग पढ़ते हैं कि यह संयोग वियोगाभ्याम करणैरुपजन्यते स्वस्फोटः शब्दजाः शब्दाः ध्वनयः अन्यैः उदाहृताः। अन्यैः उदाहृता, अन्यैः का अर्थ यहाँ पर नैयायिकैः करना है कि नैयायिक लोग जो है ना वह स्फोट तो मानते नहीं हैं, वो ध्वनि को ही जो है मानते हैं कि ध्वनि ही शब्द है, और उनका जो मत है, न्यायिकाओं का जो मत है, उस मत को इस 103 संख्या वाली कारिका में बताया गया है। तो न्यायिक आदि के अनुसार जो है ना, ध्वनि और स्फुट का क्या स्वरूप है, उस स्वरूप को इस कारिका में बताया गया। मतलब अनित्य शब्दवादी जो है उनका मत इसमें बताया गया। इसका क्या अर्थ होगा? तो वायु का संयोग और वियोग होता है। जब हम उच्चारण करते हैं ना, तो क्या होता है कि उच्चारण स्थान के साथ प्राण वायु का संयोग होता है, और फिर उस स्थान से फिर वायु जो है ना हट भी जाती है। तो यह जो वायु का संयोग और विभाग होता है, किनसे होता है? तो उच्चारण स्थान से और प्रयत्न से। तो उच्चारण स्थान और प्रयत्न के कारण जो वायु का संयोग और विभाग होता है, उस संयोग विभाग होने से जो शब्द सर्वप्रथम उत्पन्न लेता है, ऐसा है ना कि मुख में उच्चारण करते समय में सबसे पहले एक शब्द उत्पन्न होगा, और वह शब्द जो है उसी शब्द से फिर शब्दांतर उत्पन्न होता है, फिर शब्दांतर से शब्दांतर उत्पन्न होता है। एक होता है बीची तरंगन न्याय, उसमें जैसे तालाब में एक अगर पत्थर हम फेंकते हैं तो पहली एक जो है ना तरंग उठेगी, उसमें पहली लहर उठेगी, फिर उस लहर से ही दूसरी लहर पैदा होती है, फिर दूसरी से तीसरी पैदा होती है, तीसरी से चौथी पैदा होती है। इसको कहते हैं बीची तरंग न्याय। ऐसे ही जो है ना शब्द में भी होता है कि प्रथम शब्द उत्पन्न हुआ। कैसे शब्द उत्पन्न होता है? तो वो बात हुई है अभी कि संयोग वियोग होने से, वायु का जो है ना संयोग वियोग जो होता है उच्चारण स्थान प्रयत्न से, उस कारण से तो उससे प्रथम शब्द उत्पन्न होता है, और उसके बाद द्वितीय शब्द, तृतीय शब्द, चतुर्थ शब्द, पंचम शब्द उत्पन्न होता चला जाता है, और इस प्रकार से वक्ता से लेकर के श्रोता तक जो है ना वह शब्द पहुँचता है। तो न्यायिकों का कहना है, अनित्य शब्दवादियों का कहना है कि संयोग और वियोग के, वायु के संयोग और वियोग के द्वारा करणैः उपजन्यते, करणों के द्वारा, करण का अर्थ वही करेंगे उच्चारण स्थान प्रयत्न करेंगे, कि उनके द्वारा जो उपजन्यते, उपजन्यते माने प्रथमतया उत्पद्यते, जो सर्वप्रथम शब्द उत्पन्न होता है सह स्फोट, वह जो प्रथम उत्पन्न होता है शब्द ध्वनि है, उसी को जो है ना अनित्यवादी लोग कहते हैं कि सह स्फोट, वही स्फोट है। हम लोग जो मानते हैं कि स्फोट आंतर शब्द होता है, उस चीज को वो नहीं मानते हैं, कहते हैं कि वायु के संयोग वियोग से उच्चारण स्थान प्रयत्न के आधार पर जो प्रथम शब्द उत्पन्न होता है वही जो है ना स्फोट है, माने वही ध्वनि है, और उसी ध्वनि को आप लोग स्फोट कहते हो, हम उसी को स्फोट मानते हैं, प्रथम ध्वनि को ही। शब्द जाह शब्दाह ध्वनयः, और उस प्रथम शब्द से जो शब्दज, शब्दज माने शब्दात जातः, शब्द जाह शब्द से जो द्वितीय शब्द उत्पन्न होता है, तृतीय शब्द उत्पन्न होता है, इस तरह से जो शब्दज शब्द है वह जो है वह ध्वनि है, ऐसा अनित्य शब्दवादियों का कहना। अब यहाँ पर सारांश ये हुआ कि वायु के संयोग वियोग होने से जो प्रथम शब्द उत्पन्न होता है वह अनित्य शब्दवादियों के मत में, न्यायिकों के मत में, उनके मत में वही स्फोट है। स्फोट है मतलब वही वाचक है, अर्थ का वाचक है, अर्थ का बोधक है। और प्रथम शब्द से जो द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ शब्द सब उत्पन्न होते हैं, शब्दज शब्द जो है माने शब्द से उत्पन्न होने वाला जो शब्द है वह जो है वह ध्वनि है, ऐसा अनित्य शब्दवादियों का कहना है, न्यायिकों का कहना है। तो ये वाक्य पदीय जो है ना इसमें अपना मत भी बताते हैं और शास्त्रांतर का मत भी जो है इसमें बताया जाता है। अब 104वीं कारिका जो है, इस कारिका में प्राकृत और वैकृत ये जो दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है, उन दोनों के स्वरूप के बारे में बताया गया। कहते हैं कि अल्पे महति वा शब्दे स्फोट कालो न भिद्यते, परस्तु शब्द संतान प्रचयापचयात्मक। अल्पे महति वा शब्दे, इसमें जो शब्दे है उसका अर्थ करेंगे हम ध्वनौ है, तो ध्वनि में जो अल्पता होती है और महत्ता होती है, माने थोड़ा और अधिक जो होता है, लघु और गुरु जो होता है, माने लघु ध्वनि और गुरु ध्वनि, उसी को कहा यहाँ पर अल्पे महतिबा शब्दे। शब्दे का अर्थ बताया ही हमने ध्वनो माने ध्वनि में, कि अल्प ध्वनि हो अथवा महान ध्वनि हो, माने बड़ी ध्वनि हो, उसमें स्फोट कालो न भिद्यते, उससे स्फोट का के काल में कोई भेद नहीं होता है, स्फोट के स्वरूप में कोई चेंज नहीं आता है वास्तविक में। अब परस्तु शब्द संतान, हाँ, और जो शब्द का संतान है, परह शब्द संतान, परह माने अन्य, अन्य का मतलब यहाँ पर लेंगे स्फोटात अन्य, कि स्फोट से अन्य, स्फोट से भिन्न, स्फोट से जो परे है। शब्द संतान माने शब्द का तरंग, शब्द तरंग मैंने बताया था ना पिछली कारिका में कि एक शब्द से जो दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, दूसरे से तीसरा उत्पन्न होता है, वही है शब्द संतान। तो वह जो शब्द संतान है माने शब्द तरंग है, वह प्रचयापचयात्मक, प्रचय कहते हैं वृद्धि को और अपचय कहते हैं ह्रास को। तो वह जो शब्द संतान होता है, वह जो शब्द तरंग होता है, वह प्रचयापचयात्मक होता है, माने वृद्धि ह्रास स्वभाव वाला होता है। उस शब्द संतान में वृद्धि भी रहती है और ह्रास भी रहता है। तो इसका मतलब तात्पर्य ये निकला कि अल्प परिमाण वाला जो शब्द है वह हुआ ह्रस्व, और अधिक परिमाण वाला जो शब्द है वह हो गया दीर्घ और प्लुत। तो इसमें स्फोट का जो है ना, इससे भेद नहीं होता है ह्रस्व दीर्घ प्लुत से, इससे केवल ध्वनि का ही भेद उत्पन्न होता है। और शब्द से जो शब्दांतर उत्पन्न होते हैं, माने वह जो ध्वनि है वह उपचय अपचय वाला होता है, वृद्धि ह्रास स्वभाव वाला होता है। अगर वृद्धि वाला होगा तो दीर्घ प्लुत होगा, दीर्घ प्लुत कहलाएगा, और ह्रास स्वभाव वाला होगा तो ह्रस्व कहलाएगा। अब इसमें आप देखिए, मैंने प्राकृत विकृत की बात की थी कि प्राकृत विकृत का स्वरूप इसमें बताया जाएगा। तो ये जो शब्द संतान है, एक शब्द से जो दूसरा तीसरा शब्द उत्पन्न होता है वह हो गया विकृत ध्वनि। और वह प्रथमतः जो शब्द उत्पन्न होता है वह हो गया प्राकृत ध्वनि। तो प्राकृत ध्वनि जो है वही स्फोट का व्यंजक होता है, ये बात आप पहले सुन चुके हैं, समझ चुके हैं। तो जो स्फोट का व्यंजक होता है वह हो गया प्राकृत ध्वनि, और वह प्राकृत ध्वनि कौन है, जो प्रथमतः उच्चरित होता है मुख में। और शब्द संतान जो है, एक शब्द से जो दूसरा शब्द उत्पन्न होता है, जो कि प्रचयापचयात्मक होता है, वृद्धि ह्रासात्मक होता है, वह उसी को हम बैखरी ध्वनि कहते हैं। तो प्रथमतः उत्पन्न होने वाला शब्द हो गया प्राकृत ध्वनि, और शब्द से उत्पन्न होने वाला जो शब्द है वह हो गया बैकृत ध्वनि। ये प्राकृत और बैकृत में अंतर है। अब इसके आगे 105वीं कारिका में है, दूरात प्रभेव दीपस्य ध्वनि मात्रं तु लक्ष्यते, घंटादीनां च शब्देषु व्यक्तो भेदः स दृश्यते। कहा कि यह जो भेद है इन दोनों में, प्राकृत विकृत का जो भेद है, वह दूर से जो है ना समझ में नहीं आता है, पास में आने से जो है समझ में आता है। उसी को दृष्टांत के द्वारा बताया कि दूरात प्रभा इव दीपस्य, कहा कि जैसे दीपक की जो प्रभा है, दीपक का जो प्रकाश है, वह दीपक में सब कुछ ले लीजिए आप, दिया भी होगा, लालटेन भी होगा, ट्यूबलाइट भी होगा, या और कोई जो है ना वेपर लाइट होगा, कुछ भी होगा, जब उसको हम दूर से देखेंगे ना तो केवल उसमें प्रभा दिखाई देती है, माने रोशनी केवल दिखाई देती है। अब वो रोशनी किस चीज की है ये तो तब पता चलता है जब हम उसके पास में जाते हैं। उसी तरह से दूर से जो है ना प्राकृत व्यतीत ध्वनि एक ही प्रतीत होती है, लेकिन जब हम पास में गौर करते हैं, सूक्ष्मतया गौर करते हैं, तब पता चलता है कि प्रथमोच्चारित जो शब्द है वह प्राकृत ध्वनि है, और शब्द संतान जो है वह व्यकृत ध्वनि है। अब कारिका को एक बार देख लेते हैं कि दीपस्य प्रभा इव दूरात ध्वनि मात्रम तु लक्ष्यते, दीप की प्रभा की तरह दूर से केवल ध्वनि मात्र ही लक्षित होता है। घंटादीनाम च शब्देषु स्वभेदः व्यक्तः दृश्यते, तो ध्वनि जो है दूर से तो केवल ध्वनि सुनाई देगी, और जब हम पास में जाएंगे तो क्या होगा कि वहां पर हम देखेंगे कि ये घंटादीनाम च ये जो है ना व्यक्तो घंटादीनाम च शब्देशु व्यक्तो भेद सदृश्यते। इस घंटादि में घंटा मान लो, घंटा भी है तो कई तरह धातु से जो है ना घंटा बनता है, लोहे का, पीतल का, मान लो स्टील के बर्तन से भी उसको भी जो है ना डंडे से पीटने पर आवाज तो निकलेगी। तो दूर से जो है ना केवल ध्वनि सुनाई पड़ता है, लेकिन जब पास में देखते हैं तो पता चलता है कि ये पीतल वाले घंटा की ध्वनि है, ये लोहे वाले घंटे की ध्वनि है, ये स्टील वाले घंटे की ध्वनि है, या किसी और कांसा की ध्वनि है। तो ये चीज़, ये जो भेद है, यह भेद दूर से परिलक्षित नहीं होता बल्कि पास में आने से परिलक्षित होता है। इस बात को 105वीं कारिका में इन्होंने बताया और आज का पाठ हम यहीं पर स्थगित करते हैं।